नमस्कार। नेशनल इंटरेस्ट के साप्ताहिक पॉडकास्ट वर्जन में मैं शिव पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के नेशनल इंटरेस्ट में शेखर गुप्ता लिखते हैं कि कांग्रेस की हालत एम्बेसडर कार की तरह हो गई है और अपना अस्तित्व तो बचाए रखने के लिए उसे नया मॉडल नहीं बल्कि नया ब्रांड लॉन्च करना होगा। सोनिया गांधी ने काफ़ी देर करके उदयपुर में आयोजित किए गए कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत ये कहते हुए की कि पार्टी को नया स्वरूप प्रदान करना है, लेकिन इस बात से यूं ही जहन में चार सवाल उभरते हैं। पहला, पिछले 8 साल से अब तक के सबसे गहरे गर्त में पहुंच चुकी कांग्रेस को अब नया स्वरूप प्रदान किया भी जा सकता है क्या? दूसरा, अगर ये संभव है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल है कि जब कई क्षेत्रीय ताकतें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए उभर रही हैं, तब एक अखिल भारतीय विपक्षी पार्टी का होना कितना महत्व रखता है? और चौथा सवाल है कि इसका महत्व हो भी तो क्या वो अखिल भारतीय विपक्षी पार्टी केवल कांग्रेस ही हो सकती है? क्या वो नया विकल्प बन सकती है? अब इन सवालों को अलग तरह से भी रखा जा सकता है, खासकर अगर आपको याद हो कि एक समय में हर तरफ नज़र आने वाली एम्बेसडर मॉडल की कार कैसी हुआ करती थी। भारत के छोटे से कार बाजार में कभी इसका दबदबा था और ये शासन तंत्र की वैसी ही प्रतीक थी जैसे कांग्रेस दशकों तक रही। लेकिन 1980 के दशक के अंत में जब मारुति सुजुकी उभरी और 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों के साथ कारों के दूसरे आकर्षक मॉडल भारतीय बाजार में छा गए, तब एम्बेसडर बनाने वाले हिंदुस्तान मोटर्स के मालिकों और प्रबंधकों के मन में भी इसी तरह के सवाल उठे होंगे। पहला सवाल कि क्या हम एम्बेसडर का नया वर्जन ला सकते हैं? दूसरा सवाल कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये बदलाव कैसे आएगा? तीसरा, भारत के कार बाजार के लिए क्या अखिल भारतीय लोकप्रियता वाला एक ब्रांड ज़रूरी है? और चौथा सवाल ये कि भारत को अगर ऐसा ब्रांड चाहिए ही तो क्या वो एम्बेसडर ही हो सकती है? अब यह भी याद कीजिए कि हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार को नया रूप देने के लिए क्या क्या किया। उसने उसका बाहरी स्वरूप बदला, उसके एयर कंडीशन वाले मॉडल निकाले, उसमें जापानी इंजन डाला, लेकिन ये सब कुछ भी एम्बेसडर को बचा नहीं पाया। अब यह भी याद कीजिए कि हिंदुस्तान मोटर्स ने इस कार को नया स्वरूप देने के लिए क्या क्या किया। उसने उसका बाहरी स्वरूप बदला, उसके एयर कंडीशन वाले मॉडल निकाले, उसमें जापानी इंजन डाला, लेकिन ये सब कुछ भी एम्बेसडर को बचा नहीं पाया। अब आप एम्बेसडर वाली कसौटी पर कांग्रेस पार्टी को कसें तो पहले दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि इतने पुराने ब्रांड को नए अवतार में बदलना संभव नहीं है। आपने जो कोशिशें की वे विफल हो चुकी हैं, कांग्रेस ने जो नई चीज़ें की वे चमक खो चुकी हैं। इसका सबसे नया सबूत यह है कि पार्टी के गुजराती नेता हार्दिक पटेल उदयपुर में मौजूद नहीं हैं। पार्टी ने उन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शामिल किया था और कहा जा रहा था कि यह रूढ़िवादी पार्टी का क्रांतिकारी कदम है। नए गठबंधन बनाए गए, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ हों, वामदलों के साथ, कर्नाटक में JDS के साथ, राजद के साथ, तेलंगाना में TDP के साथ, या सबसे अहम उत्तर प्रदेश में सपा के साथ। लेकिन गठबंधनों की विफलता इतनी घातक रही है कि अब संभावित सहयोगी भी कांग्रेस से जुड़ाव को खुदकुशी के समान मानने लगे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी ने मायावती की ओर हाथ बढ़ाया था, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। शरद पार्टी की जोशीली पार्टी NCP और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिवा भारत की लगभग सभी पार्टियां कांग्रेस को गठबंधन के काबिल नहीं मानती। इसके अलावा कांग्रेस ने खुद को नया स्वरूप देने की और भी कई कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी विफल रहीं। अंबानी अडानी की सरकार के नारे के साथ वामपंथी झुकाव देने और चौकीदार चोर है के नारे के साथ भ्रष्टाचार विरोधी तेवर देने की कोशिश हुई। मंदिरों के दौरे किए गए और खासकर दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण होने के दावे तक किए गए। प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। प्रमुख राज्यों में नए नेताओं को आजमाया गया, खासकर पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन ये सारे के सारे प्रयास विफल रहे। इसलिए पहले दो सवालों का जवाब यही है कि 1990 के दशक के एम्बेसडर कार की तरह कांग्रेस नामक ब्रांड और माल का नया अवतार नहीं गढ़ा जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या इसकी ज़रूरत है भी? क्या इसे इतिहास में विलीन नहीं हो जाना चाहिए जिस दिशा में वो हाल में बढ़ रही है? और क्या भाजपा विरोधी राजनीतिक स्पेस को ज़्यादा सक्षम उत्तराधिकारियों के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए? पार्टी के जहीन लोग जब उदयपुर में चिंतन में लगे हैं तब ऐसे तर्क कड़वे लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप चुनौती की गंभीरता को कबूल नहीं करेंगे तब तक आप गंभीर आत्मविश्लेषण कैसे करेंगे? आप ट्विटर पर अपनी जीत के अपराजेयता और अपरिहार्यता के दावे हमेशा नहीं करते रह सकते। ये हमें तीसरे और चौथे सवालों के सामने ला खड़ा करता है। इसमें शक नहीं कि ज़रूरत हो या न हो, कारों में अखिल भारतीय दबदबे वाला एक ब्रांड होगा ही। ये संयोग है कि आज यह ब्रांड मारुति है, लेकिन कल ये हुंडई, परसों टोयोटा, महिंद्रा या टाटा इत्यादि हो सकते हैं। हर तरह की कार में एक प्रमुख मॉडल होगा, लेकिन उस स्थान के लिए होड़ जारी रहेगी। जो निरंतर बदलता रहेगा और नयापन लाता रहेगा, वह मॉडल बचा रहेगा। लेकिन एम्बेसडर की तरह जिसका नाम ही पुराना पड़ जाने का एहसास दिलाता हो, उसे नया अवतार देने की कोई संभावना ही नहीं बनती। कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता वही है जो एम्बेसडर के निर्माताओं के सामने रहा होगा। बाजार को नया, बेहतर और परिवर्तित मॉडल देकर नहीं, बल्कि एकदम नया ब्रांड उतार कर चकित कर दीजिए। जो ब्रांड इतना टूट चुका हो, उसे नया स्वरूप नहीं दिया जा सकता। आपको नया ब्रांड बनना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चौथा सवाल आपको परेशान करेगा। भारतीय लोकतंत्र में आज भाजपा को चुनौती देने के लिए एक मजबूत अखिल भारतीय ताकत की ज़रूरत है, ताकि उसे तुरंत न भी हटाया जा सके तो हमारी राजनीति में कुछ संतुलन तो बना रहे। लेकिन 1990 के दशक वाली एम्बेसडर की तरह वो ताकत अब कांग्रेस नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया 3 दशक से चल रही है। हिंदी पट्टी में एक के बाद एक राज्य में जाति आधारित दलों ने जिस तरह से सेकुलर और वंचित तबकों के वोटों पर कब्जा किया है, उसके कारण कांग्रेस अपने वोट दृढ़ संकल्पित नए नेताओं के हाथों गंवा चुकी है। इन नए नेताओं में अधिकतर तो उसके ही बागी रहे हैं, चाहे वो ममता हों या जगन या हेमंत। और अब उसके बाकी बचे वोटों पर आप यानी आम आदमी पार्टी तेज़ी से कब्जा कर रही है। पार्टी जिस तरह से अपने शीर्ष नेतृत्व को नहीं बदल सकती, उसी तरह से अपने ब्रांड नेम को भी नहीं बदल सकती। पार्टी ने ठोक पीट करने से लेकर अदल बदल, पद परिवर्तन, गठबंधन, सामाजिक या आर्थिक मसलों पर सैद्धांतिक जड़ों की ओर लौटने तक तमाम उपाय आजमाए, मगर वे विफल रहे और गिरावट जारी है। तब आखिर भविष्य क्या है? पार्टी उदयपुर में चिंतन करने पर समय क्यों जाया करे? तो क्या भारत की सबसे पुरानी पार्टी खुद को विघटित कर दे? जाहिर है ऐसी सलाह कोई नहीं देगा और न ही ऐसी ख्वाहिश करेगा। मैं तो निश्चित ही ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि विपक्ष मुक्त भारत एक आपदा होगी और कांग्रेस मुक्त भारत उस दिशा में 3/4 रास्ता तय करवा देगा। तभी ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक और राजनीतिक अखाड़े के भगवा खेमे के एक प्रमुख चिंतक शेषाद्रिचारी तक चाहते हैं कि कांग्रेस बनी रहे और मजबूत हो। उसके लिए उनका नुस्खा ये है कि उसमें विभाजन हो। विभाजन कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, खासकर 1960 के दशक के मध्य से। समय समय पर इसमें से कई गुट अलग होते रहे हैं, कांग्रेस ओ, जे, एस, आर, NCP, CFT, और ये सुनकर हम सोच में पड़ गए होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर की कमी न पड़ जाए। अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस टूटती है तो किसके पल्ले क्या पड़ेगा और कौन क्या छोड़ जाएगा? पिछले एक दशक में गांधी परिवार कई स्थापित नेताओं को गंवा चुका है। इसे धीमी गति वाला विभाजन कहा जा सकता है। उसका वजूद बचा रहना, उसका नया अवतार बनना या उसका पुनरुत्थान संभावना से परे है। रास्ता केवल एक ही है कि कुछ नया बनाया जाए, और वो नया शानदार अतीत की छाया न हो, बल्कि भविष्य की ओर देखता एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट हो। नेहरू, इंदिरा और राजीव को लेकर आग्रहों को कम कीजिए। अभी भी आपका समर्थन करने वाले करीब 20% मतदाताओं से बाहर का कोई मतदाता आपको आपके अतीत के नाम पर वोट नहीं देने वाला है। एम्बेसडर कार को आप चाहे जितना संवार दीजिए, उसे वापस नहीं ला सकते। पूरी तरह से नई चीज़ बनाना ही आपको एक बार फिर मौका दे सकता है, लेकिन यह काम तेज़ी से कीजिए, क्योंकि आप जिस द्वीप पर बैठे हैं उसे चारों तरफ से उठती लहरें तेज़ी से सिमटा रही हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।